ये तो थे आइडियल हालात। अब क्या हुआ, आयत का अगला हिस्सा देखिएगा। वल्लाती तखाफूना नशूज़हुन्ना, और वो खवातीन जिनके बारे में तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, यानी बीवी की बात में कह दिया था फस्सालिहातुन कानितातुन, औरत के अंदर खूबियां बता दी गई थी, लेकिन हर औरत सालिहा नहीं होती, हर औरत कानिता नहीं होती, हाफिज़ अलिल गैब नहीं होती, तो क्या होगा। अब एक औरत है, वो अपनी ये जिम्मेदारियां नहीं पूरी करती जो उसको अल्लाह ने दी हैं, तो अल्लाह ताला उस औरत के शौहर को कहते हैं वल्लाती, ये फिर वही ला की ला खुद खींचिएगा, जमा का सीगा है कि वल्लाती, वो औरतें तखाफ ना, तुम डरते हो। कौन डरते हैं, मर्द डरते हैं या उसके घर वाले या जो भी ऊपर के लोग हैं, किस चीज से, नशूज होना, उनके नशूज से। ये जरा सा नया लफ्ज है, इसको देख लीजिएगा। नशूज का लफ्ज नशजा से है, नून शीन जा इसका रूट है, नशजा। नशजा कहते हैं ऊंची जगह को, अनशजा व उनशिजु, बुलंद और ऊंची जगह को कहते हैं, यानी नशजा वो ऊंची जगह पर चढ़ गया। अब नशूज क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए, बीवी का खुद को ऊंचा समझना, खुद पसंदी, सेल्फ प्रोजेक्शन, शौहर के मुकाबले में खुद को बड़ा समझना और शौहर को कुछ समझना ही ना, उसकी मुखालफत पे उतर आना, नाफरमानी करना, मुतनफिर होना, झगड़ना, बदसलूकी करना, सामने बुलंद आवाज से बोलना। अल्लाह सुबहाना तला कहते हैं कि जब एक औरत बदतमीज हो जाए, बद अखलाक हो जाए, सालिहा ना रहे, कानिता ना रहे, हाफिजा ना रहे, सरकश हो जाए, उसके दिमाग में ये सवार है कि मैं आला हूं अपने शौहर से और मेरे में बड़ी खूबियां हैं, तो अब क्या करो। एक जुमला बोल दूं, वल्लाती तखाफूना नशूज़हुन्ना फतल्लिकुहुन्ना, जान छुड़ाओ इस औरत से, कि जो औरत जिसकी सरकशी का तुम्हें डर है, जो बद तहजीब है, बदतमीज है, फ्रिक्शन पैदा करती है, मुजाहमत रखती है, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े का असूल है, तो क्या करो, सीधी सी बात है, तलाक दे के जान छुड़ा दो, यही होना चाहिए था ना। लेकिन जरा कुरान का सब्र और तहम्मुल देखिए, नहीं, आप इस हिस्से पे जुमला लिख लें, मैं हर दफा ही बोलती हूँ, टूटते घर को बचाने के तरीके, घर नहीं तोड़ना, थोड़ा सा इस औरत की तरबियत करो। क्या फर्स्ट स्टेप, आप फिर 1 2 3 लिखिएगा। फर्स्ट स्टेप फाइजू होना, बस इनको समझाओ, ये जो फा इजू है ना, फा अलग करेंगे तो पीछे इसमें वाव छुप गई है, असल में वो लफ्ज है जिसको उर्दू में हम वाज कहते हैं, और वाज कहते हैं दिल को नरम करने वाली बात। तो इन औरतों को नसीहत करो, दिल सुभाने वाली, प्यार से बात करो, बेगम आपको क्या है, ऐसे नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है, यानी समझाओ बुझाओ। प्यार की डांट भी हो सकती है, कुछ अरसा ऐसा कर लो, अगर इंसान होगी तो समझ जाएगी, अगर थोड़ी सी भोली बनी हुई थी तो समझ आ जाएगी कि मेरा शौहर मेरी इस बदतहजीबी को कितने प्यार से मेंटेन कर रहा है। हो गया, इट्स फाइन, नहीं मानी, जरा सा जुर्म इससे शदीद है, तो सेकंड स्टेप लिखिए, वह जुरू हुन नफिल मदाजे, और छोड़ दो इनके बिस्तरों में इनको तनहा। हजारा यह जुरू छोड़ना, और मदाजे पीछे भी पढ़ चुके हम, सूरत आल इमरान में आया था, वहां कतलगाहों के मानों में था, यहां मुराद है ख्वाब गाहें, बंदा मरने या सोने के बाद अपने बिस्तर पे लेट जाता है ना, तो सोना, यही लव सूरत सजदा में भी रात को आप पढ़ते हैं, ततजाफ जुनूबहुम अनिल मदाजे। तो क्या कहा, बेडरूम छोड़ दो, देखिए नोट करें, घर नहीं छोड़ना। और अभी आपको रिवायत भी सुनाती हूँ कि अच्छे मर्द घर नहीं छोड़ते, कमरा छोड़ के अलग हो जाएंगे, यानी नसीहत और मलामत से काम ना चले, तो दूसरा मरहला ये है कि इनसे अपने बिस्तर अलग कर लो, शौहर बीवी का ताल्लुक कुछ अरसे के लिए अलग करो, क्योंकि औरत के लिए ये बहुत बड़ी चोट होती है। याद रखिए, औरत खुद कितना नखरा करे, कितनी अदाएं दिखाए, लेकिन जब मर्द कह देता ना कि मैंने तेरे पास नहीं आना, तो औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसमें औरत की अना को हिट पड़ती है, ये मुझे मना कर रहा है, अल्लाह ने ये किस्म का शौक दिया, जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं ना, शॉकिंग, शौक लगाना, बिजली का झटका लगाओ, कि इसको सोया बस शौर जिंदा हो कि मेरा शौहर मुझसे इतना नाराज है कि मेरे साथ नहीं आ रहा, हालांकि अमूमी तौर पे तो मर्द की ख्वाहिश होती है साथ रहने की, लेकिन वो कह रहा है मैंने तेरे साथ नहीं सोना, यानी नहीं उठ के जाके लॉबी में सो जाए, लाइब्रेरी में सो जाए, बीवी को अकेले छोड़ दो, उसको नहीं कहा तुम जाओ, ये भी नोट करें, तुम नहीं जाओ, मैं अपना तकिया उठा के जा रहा हूं, समझ जाएगी। वाकई उसको समझ आएगी कि बात अब बिगड़ रही है, ये तो अब कमरे से बात बाहर जा रही है। मान जाएगी, अब भी नहीं मानी वो लाडली बेगम, अब क्या करें फिर उस बेगम को, वदरीबू होना। अब एक हल्की सी चपत लगाओ, वेस्ट ने और एनजीओस ने और ह्यूमन राइट्स वालों को ना तो फाइजू होना दिखा, ना पिछले सारी औरत की मर्द की बांट दिखी, ना उनको वाहजुरू न फिल्म अदा दे देखा, बस इस लफ्ज को पकड़ के देखो वादरी बनाओ। इस्लाम कहता है मारो इनको, और यकीन करें इंग्लिश का एक ऐसा कुरान जिसको हाईलाइट करके किसी ने दिखाया कि वदरीबू हुन्ना का तर्जमा मारो इनको नहीं था। देखिए मारना दो तरह से होता है ना, टू हिट मारना, और ये क्या है टू किल। उन्होंने इसका तर्जमा, ये जो वेस्टर्न हमारे दीन को प्ल्यूट करते हैं वो इसके तर्जमे में मारो को टू हिट नहीं टू किल लिखते हैं, कतल ही कर दो इनको, मार ही छोड़ो, मार मार के इनको धुआं कर दो। यानी ये घर बचाने का तरीका है। तो देखिए सीधी सी बात ही, वल्लाती तखाफूना नशूजा होना, जिनकी तुम चढ़ाई से डरते हो बस तलाक दे के जान छुड़ाओ, दूसरी ले आओ, गर्लफ्रेंड्स ले आओ, ना रो उसके पास। ये तो नहीं कहा, अल्लाह चाहता है ये घर ना टूटे। घर टूटने के लिए नहीं बनते, आप बनना है आप संभालो, प्यार से समझाओ, फिर इसको घर में रखो। नहीं मानती ना तुम मारो, कितना भी आप हदीसे सुनेंगे तो आपके भी अगर दिल में कोई ग्रज आ गया इस लफ्ज को सुन के तो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा, लेकिन अभी पूरी आयत करेंगे हम। मुराद ये है कि अगर वो अपनी रविश ना बदलें तो मर्द हल्की सी सजा दे सकता है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया ना चेहरे पे मारा जाएगा, ना ऐसी मार हो जिसका निशान पड़े, ना हड्डी टूटे। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को नहीं मारा। ये सिर्फ वही है, ये देखे होश करो, वही जैसे शॉक्स है, इसको लेजर्स के साथ इलाज करो कि इसका शौहर जागे कि इसका घर टूटने वाला है। तो ये मार तो बरकत वाली है, और मार भी कैसी है, स्टिक आपने फरमाया पीलू की शाह, आपने लेके सहाबी ने पकड़ के एक मिसवाक पकड़ के कहा ऐसे ये मारो। तो इससे ज्यादा तो हम वैसे लाड में भी एक दूसरे को मार लेते हैं, बच्चों को नहीं मार लेते। तो कई लोगों को हाथ पे हाथ मारने की बात है। अब क्या हुआ, मान गई तो ठीक है, और अगर ये सारे ये इलाज है, स्टेप्स हैं टूटते हुए घर को बचाने के, ये करके फाइन अतानकुम, फिर अगर वो तुम्हारी बात मान ले, यानी बीवी को समझ आ गई, तो फला तब हुआ अलैहिन्न सबीला, फिर अब उनके खिलाफ खामखा ज्यादती के रास्ते ना ढूंढो। यानी अब वो ठीक हो गई है तब उसको ताने ना दे, तो वही है ना जो मार खा के सही हुई है, तो वही है ना जिसको मैंने ऐसे किया था तो ये हुआ था। मतलब यह है कि अगर औरत फिर ठीक हो जाए तो पिछली सारी बातें छोड़ के उसको सीधी तरह रखो, और देखो अगर तुमने बीवी पे ज्यादती की, तुमने खुद को उसके ऊपर बड़ा समझा, हाकिम समझा, हुक्मरान समझा, तो इन्नल्लाह कान अलियन कबीरा, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। क्या पता चला तुम बीवी पे बड़े हो तो तुम पे मैं बड़ा हूं, यानी फिर तुम उस पर अगर ज्यादती करोगे तो मैं भी तुमसे पूछूंगा। चलिए ये भी बात हो गई, अब क्या हुआ, बात फिर भी नहीं बनी, मार खा के भी नहीं सीधी हुई औरत, कहती है नहीं मैंने अभी नशूज रखना है। तो अब आखिरी स्टेप है घर को बचाने का, आयत 35 में, व इन खिफ तुम शिका का बेनिहिमा, और अगर तुमको मियाँ बीवी के दरमियान शिकाक यानी इफ्तराक का अंदेशा हो, शिका कहते फट पड़ना, कोई बात ही नहीं मिलती, लग रहा है कि ये जहां बैठेंगे लड़ेंगे, जब इनकी बात होनी है उसके एंड पे गालियां ही बचलनी है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा, कोई तदबीर नहीं काम आ रही, जिद्दम जिद्दा की कैफियत कह ले पैदा हो गई, औरत भी अकड़ गई, मर्द भी अकड़ गया, उधर भी कह ले ईगो प्रॉब्लम है, इधर भी ईगो प्रॉब्लम है, अब नहीं चलते। तो आखिरी मरहला, फबसु हकम मिन अहली ही व हकम मिन अहलीहा, तो एक हकम मर्द के खानदान से मुकर्रर करो और एक हकम औरत के खानदान से। देखिए एक लफ्ज होता है हाकिम, ये कहाँ होता है, मुल्क में अदालत में, बड़ा लफ्ज है, लेकिन हकम कौन होता है, फैमिली का बड़ा, जिसको पंजाबी में क्या कहते हैं, पंचायत बिठा लो, पांच लोग बैठ जाए, तो हाकिम बड़े लेवल पे है। अब हकम जो है वो कोई खानदान का बुजुर्ग, कोई मामू चचा, कोई साहेब, कोई आलम दीन, एक उधर से बैठ जाए किधर से बैठ जाए, युरीदा इस्लाहन, अगर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे, युवफ़िकिल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान जरूर मुवाफ़कत पैदा कर देंगे। देखिए इस्लाम सुलह की आखिरी कोशिश कर रहा है। शोहर बीवी का इशू निजी इशू होता है, पर्सनल इशू होता है, पहले कमरे में रहा, कमरे से बाहर आ गया, बाहर से आया तो समझाया, हल्की सी बात तो नहीं, अब बाहर के लोग डले, और वो दोनों पूरी कोशिश करें, और बाहर वाले दो कौन डलेंगे जो न्यूट्रल होंगे, क्योंकि देखिए जब दो लोग लड़ते हैं ना तो उनको खुद भी नहीं समझ आता वो क्या करे, अकली मारी जाती है, गलत फैसले होते हैं। इसलिए कहा ठंडे दिमाग वाले दो समझ बूझ वाले लोग आए, वो पूरी बात इनकी भी सुने उनकी भी सुने, फिर उन दोनों की आपस में बात हो जाए, और अगर इसलाह करनी होगी तो अल्लाह ताला मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। और कहते हैं लड़ाई के बाद जो सुलह होती है वो बड़ी मीठी होती है, अगर बीच में ईगो का इशू ना हो, कोई नफ्सियाती गिरा ना हो कि जिसको खोलना मुमकिन नहीं, तो हकीकत में सुलह होने के चांसेस होते हैं जब किसी बाहर के बंदे को डाल दें। और इन्ना अल्लाह कान अलीमन खबीरा, अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है, बखबर है, उसको पता है। अब यहाँ आपके जहन में एक क्वेश्चन है जो मुझे खुद नजर आ रहा है कि अच्छा जी ये औरत तो बिगड़ी हुई है, तो अगर मर्द बिगड़े हों, जहन में ऐसा सवाल किसी के ये बात सुन के, तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। इसी सूरत में काफी आयतों के बाद आएगा कि शौहर बिगड़ जाए तो क्या करे। लेकिन अब आप सारी आयत समझ चुके हैं, खुलासा क्या निकला, इस्लाम ने घर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। औरत और मर्द दोनों में खराबी हो सकती है, याद रखिए, ना औरतें कोई परियां और हूर हैं और ना मर्द परियां और हूर हैं। होता क्या है कि दोनों में से जब कोई एक अपनी जिम्मेदारी ना पूरी करे, दूसरी बात आदतों का फर्क। देखिए इस पे मैं आपको जरूर दावत दूंगी कि निकाय टू जी सुने, मैंने उसमें जो बोलना था मेरे हले बोल दिया, एक एक एंगल से बात की थी। और इधर एक किताब उन निकाह भी रखी होगी, बाहर भी और लाइब्रेरी में भी होगी, जो तफहीमु सुन्ना सीरीज की वो बुक भी ऑलमोस्ट उसमें पूरी हमने अलग पढ़ी कि औरत की अच्छी बीवी की खूबियां, अच्छे शोहर की खूबियां, घर कैसे बनता है। फिर लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान गई तो मैंने वहां बुक किताबु तलाक पढ़ाई थी, है कहने को किताबु तलाक, लेकिन तलाक से पहले आधी बुक में सिर्फ अच्छी बीवी और अच्छे शौहर की सारी बातें लिखी हुई हैं। तो जब अच्छे हो जाएंगे तो सारे मामले बदल जाएंगे, लेकिन घर को रखने और तोड़ने के तरीके होते हैं। पीछे आपने तलाक का टॉपिक पढ़ा ना दूसरे पारे में, हमारे मुल्कों में आज वो भी ठीक है? मुझे लगता है ना हमारा शादी करने का तरीका ठीक, ना लड़की ढूंढने का तरीका ठीक, ना शादी के बाद के तरीके ठीक, और तलाक तक हमें कुछ पता ही नहीं चलता और क्या हो रहा है। अल्लाह ताला ये सारी बातें हमारे सामने ला के बताता है कि कुरान सिर्फ चूमने की किताब नहीं। आप सोचिए ना, अगर ये जो आयतें हैं जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या सवाब होगा, इसमें क्या बरकत है, ये तो सरासर अमल की बात है। अब आप देखिए ना, आज पूरे 1.5 घंटा हुआ हमारा आज का टारगेट जो था, 1 आवर 30 मिनट की रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसको सामने रखें, इस 1.5 घंटे में हम कितने सपारे पढ़ सकते थे यहाँ बैठे हुए सारे लोग, मेरा हाल 4 कुरान तो हमने पूरे कर लेने थे, राइट? तो समझ कितना आना था। अगर कुरान सिर्फ कुरान खानियों के लिए है तो इन आयतों का क्या तरीका था, फिर क्या जरूरत इतनी लंबी बहसों की। आपको दिख नहीं रहा, इस मैनुअल ऑफ लाइफ, सर्वाइवल गाइड है कि जिंदगी कैसे गुजारो। आज ये मसला है हमारी उम्मत का, लोग ऐसे मसलों में पढ़ते हैं ना, घरों में चुक चुक होती है ना, कुरान पढ़ाते हैं बैठाते हैं, चलो जी सहेलियां बैठ के कुरान पढ़ रही हैं, आप दही वाले बना रहे हैं और चाट बना रहे हैं, और आप उनको खिला के कहते हैं देखना अब हमारे घर में सुकून हो जाना है। नहीं होगा, असल राहत यहां से मिलनी है, कुछ भी कर ले। मैं कहती हूँ ये जो काम इस वक्त आप और मैं अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी इबादत इसका मुकाबला नहीं कर सकती, ये मैं पूरे यकीन से आपको कह सकती हूँ। इसी के लिए अल्लाह के नबी ने 23 साल लोगों के साथ मुखालफत सही, आप बैठ के लोगों को कुरान खानियां कराते, देखना सारे काफरों ने आपके पांव धो धो के पीने थे, तस्बीहां ले आनी थी आपके आगे, पानी की बोतलें रख देने थी, मुझे दम कर दो, उसको कर दो, उसको कर दो, फूको मेरे ऊपर। सारा झगड़ा मक्का के माशरे में ये था कि ये आयतें हमारी जिंदगी में क्यों रुक डाल रहे हैं, हमने एक अपना निजाम कायम किया हुआ, ये हर बात में आके दखल देते हैं, तो ये दखल तो ना देंगे तो कल जाके पता लग जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे और हम सबको माफ करे और अच्छा बनने वाला बना दे। और याद रखिएगा कि जितना ज्यादा आप अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं उतना करें, फिर सिर्फ पीछे एक ही बात रह जाएगी कि मर्द दीन से अगर दूर है, बाज़ लोग आदतन बड़े अच्छे होते हैं लेकिन दीन से दूर हैं, तो फिर आप सब्र करके अच्छे तरीके से उनको दीन के करीब ले आए। बाज़ सिस्टर्स के हस्बैंड दीन के बहुत करीब हैं, अखलाक से दूर है, मिजाज में सख्ती है, शक करते हैं, वहम करते हैं, तो याद रखिए कि ये इम्तिहान है, आपने अच्छे तरीके से उनके साथ लेना है, अपना वक्त गुजारना है। अल्लाह ने चाहा तो कुछ वक्त लगता है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक होती हैं। जिस बर्तन को तोड़ना नहीं है उसको फिर ठुकोरते क्यों हैं? सवाल दो चार बनते हैं कि ये नशूस क्या था, क्योंकि ये मुश्किल लफ्ज़ था ना आपके लिए, तो औरत का नशूस क्या है? तो इसके बारे में अरबी का एक लफ्ज़ सुन लीजिए, नशीज़ा उस सवारी को कहते हैं जिसकी पीठ पर सवार या जैद ना रह सके, यानी वो औरत जो अपने शौहर को हकूक भी नहीं पूरे करने देती, اپنے مرد کے لیے وہ ناقابل تسخیر ہو چکی ہے. پھر اسی طرح عورت کا اپنے شوہر سے بغض رکھنا، نافرمان ہونا، نبھا نہ کرنا، کہنا میری تم سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، سرکشی اختیار کرنا. امام راغب ہیں ایک ڈکشنری ہولڈر، وہ کہتے ہیں عورت کا اپنے شوہر کو برا سمجھنا، دوسرے مرد پر نظر رکھنا، یہ بھی نشوز کے اندر آ سکتا ہے، بدخوئی کرنا، اپنے شوہر کی برائیاں کرنا، اٹھان ابھار یعنی ہیجان ہے اس عورت میں، جوش ہے بہت، وہ جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑی اتھری ہے، بڑی تیز بنی ہوئی ہے. عورت کا اپنے خاوند کو اپنا ہمسر اور اس سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھنا، یہ بھی نشوز ہے. اس کی اطاعت کی بجائے کج بحثی کرنا، یعنی عورت کا اپنے شوہر سے بحثیں کرنا، ہندہ پیشانی یعنی مسکراتے ہوئے ملنے کی بجائے بدخلقی سے پیش آنا، یہ بھی اسی کی تفسیر میں آتا ہے، سرکشی پہ آنا، بات بات پہ ضد اور ہٹ دھرمی دکھانا، اور مرد پر ناجائز تہمتیں لگانا، یہ ساری باتیں نشوز میں آتی ہیں. یہ تفسیر القرآن ہے، اس کے اندر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہیں ہماری طبیعت میں تو نہیں ہے سرکشی. تو اسلام کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو لو، اور اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور جب انشاءاللہ آگے آپ مرد کی بگاڑ کی باتیں بھی پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری اور پریکٹیکل ٹپس بھی ملیں گی، کیونکہ آفٹر آل آپ عورتیں ہیں اور آپ کو تو مسائل اپنے اور ہسبینڈس میں ہی دیکھیں گے نا. مرد پڑھیں گے تو وہ اس آیت پہ بڑے خوش ہوں گے، وہ کہتے دیکھو مارو ان کو، جا کے سارے مارنا شروع ہو جائیں. آپ کو ہوتے، میں رپورٹ سن رہی تھی، اے آج سے 4 سال پہلے کی بات کہیں تھی، میرے خیال امریکہ یا کینیڈا میں ہر 3 میں سے ایک عورت کو مار پڑتی ہے، پٹتی ہیں عورتیں، ہر جگہ پٹ رہی ہیں. بڑے بڑے اداکاریں پٹی ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی، آپ نے اسکینڈل سنے ہوں گے، وہ پٹی، کسی کی کمر پہ نشان ہے تو کسی کی، کیا انہوں نے سورت نور کے سورت نساء کی آیت پڑھ کے مارا ہے کہ قرآن کہتا ہے مارو ودربو ہونا. ہر جگہ عورت ویسے بھی مارے کھاتی ہیں، ویسٹ میں تو عورت بہت ہی کھاتی ہے. تو آپ مزاج دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں مارا، ہمارے خاندانوں میں کس کو مار پڑی؟ آپ کی خالاؤں کو مار پڑتی ہے، چچیوں کو پڑتی ہے، پھوپھیوں کو پڑتی ہے، ماں باپ کو پڑتی ہے، بہنوں کو پڑتی ہے. کوئی ایک نشئی شوہر ہے جو آپ کی ماسی کی کوئی بہن کا میاں ہے تو وہ اپنی بیوی کو نشہ ٹوٹنے پہ مارتا ہوگا، یہ کچھ سنا ہوا نا. لیکن ویسٹ میں تو ایسے لگتا ہے ہر عورت مار کھا کے سوتی ہے، اور یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اتنی پیاری آیتیں لوگوں سے چھپائی نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو ہم مزید آگے جہاں بھی موقع ہے ایک اور دیکھیں گے. اور مار جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ گھر بچ جائے، غصہ نکالنا نہیں ہے، عورت کو ذلیل کرنا نہیں ہے. جب یہ سارے سٹیپس نہ پورے ہوں پھر اس کے بعد مار کا ہوگا. یہ حدیث سن لیجئے مار کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے، عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو، عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی اور پسلی کا اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے. ایسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، کرکٹ سی ہوتی ہے، تو عورت کی نزاکت کی طرف اشارہ ہے. اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی. پھر عورتوں کے حق میں وصیت کو قبول کرو. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو تو اسے دیا جائے، کپڑے کی ضرورت ہو تو پہنایا جائے، چہرے پہ نہ مارا جائے، نہ چہرے کو بگاڑا جائے، اس کو صرف گھر کے اندر خوابگاہ سے علیحدہ کیا جائے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. حضرت عمر آئے، انہوں نے عرض کیا کہ عورتیں تو مردوں پر جری ہو گئیں. وہ جو شان نزول کا واقعہ نا، وہ یاد کریں کہ مرد نے عورت کو مارا تو اللہ کے نبی نے کہا تم بھی مار لو، تو اس پہ آیت اتر گئی کہ نہیں تم نہیں مارو. بھئی سوال ہے کہ کیا عورت بھی مرد کو مار سکتی ہے؟ مارے گی تو چار کھائے گی. اللہ نے بچا لیا عورت کو مار کا اجازت دے کر، پہلے اجازت تھی پھر روک لیا کہ عورتیں تو مردوں پر جری ہو گئیں، تو آپ نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی. اس کے بعد اللہ کے نبی کی ازواج کے پاس کچھ عورتیں آئیں اور اپنے مردوں کی شکایت کی کہ اب تو ہمارے مردوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نہیں ماریں گے. تو بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت کا خلاصہ تھا. اور اسی طرح سے ابو داؤد ہی کی روایت ہے کہ آپ نے نہ کسی خادم کو اور نہ کسی عورت کو کبھی بھی مارا. دیکھیے سب سے بڑا رول ماڈل کون ہے ہمارے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. ان کو دیکھ لیجئے جو وہ کرتے تھے، اس کو معاشرے میں عام کر دیں. آج کوئی جو کر رہا ہوگا وہ بھی ہے. ایک بڑی اچھی روایت ہے، عبداللہ بن زمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہوگا. بخاری کی روایت ہے، یعنی مار دیا تو کل تمہیں اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. تو ایسے تعلقات جس میں انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا صبر اور برداشت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. بہرحال سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا